संबंध। अर्जुन का भय दूर करने के लिए भगवान आगे के श्लोक में उनको देव रूप देखने की आज्ञा देते हैं। महते व्यथामाच विमूढ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमेद्रिं ममेदं व्यपेत भीप्रीत मना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। यह मेरा इस प्रकार का उग्र रूप देखकर तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए और विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। अब निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर तो फिर उसी मेरे इस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह देख ले। व्याख्या। माते व्यथा माच विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोर मेन्द्रिंग ममेदम। विकराल दाढ़ों के कारण भयभीत करने वाले मेरे मुखों में योद्धा लोग बड़ी तेजी से जा रहे हैं। उनमें से कई चूर्ण हुए सिरों सहित दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं और मैं प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए उनको चारों ओर से चाट रहा हूं। इस प्रकार के मेरे घोर रूप को देखकर तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए, प्रत्युत प्रसन्नता होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि पहले 45वें श्लोक में तू जो मेरी कृपा को देखकर हर्षित हुआ था, तो मेरी कृपा की तरफ दृष्टि होने से तेरा हर्षित होना ठीक ही था, पर यह व्यथित होना ठीक नहीं है। अर्जुन ने पहले कहा था प्रव्यथितास्तथा हम 11:23 और प्रव्यथितांतरात्मा 11:24। उसी के उत्तर में भगवान यहां कहते माते व्यथा, मैं कृपा करके ही ऐसा रूप दिखा रहा हूं, इसको देखकर तुझे मोहित नहीं होना चाहिए। माच विमूढ़ भाव है। दूसरी बात, मैं तो प्रसन्न नहीं हूं और अपनी प्रसन्नता से ही तुझे यह रूप दिखा रहा हूं, परंतु तू जो बार बार ये कह रहा है कि प्रसन्न हो जाओ प्रसन्न हो जाओ, ये तेरा विमूढ़ भाव है, तू उसे छोड़ दे। तीसरी बात, तूने कहा था कि मेरा मोह चला गया 11:1 में, पर वास्तव में तेरा मोह अभी गया ही नहीं है। तुझे इस मोह को छोड़ देना चाहिए और निर्भय तथा प्रसन्न मन वाला होकर मेरा वह देव रूप देखना चाहिए। तेरा और मेरा जो संवाद है यह तो प्रसन्नता से आनंद रूप से लीला रूप से होना चाहिए, इसमें भय और मोह बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मैं तेरे कहे अनुसार घोड़े आंकता हूँ, बातें करता हूँ, विश्व रूप दिखाता हूँ आदि सब कुछ करने पर भी तूने मुझ में कोई विकृति देखी है क्या? मुझ में कुछ अंतर आया क्या? ऐसे मेरे विश्व रूप को देखकर तुझ में भी कोई विकृति नहीं आनी चाहिए। हे अर्जुन, तुझे जो भय लग रहा है वो शरीर में अहंता ममता होने से ही लग रहा है। अहंता ममता वाली चीज नष्ट न हो जाए इसको लेकर तू भयभीत हो रहा है। ये तेरी मूर्खता है, अनजानपना है, इसको तू छोड़ दे। आज भी जिस किसी को जहां कहीं जिस किसी से भी भय होता है वह शरीर में अहंता ममता होने से ही होता है। शरीर में अहंता ममता होने से वह उत्पत्ति विनाशशील वस्तु को रखना चाहता है, अर्थात प्राणों को रखना चाहता है। यही मनुष्य की मूर्खता है और यही आसुरी संपत्ति का मूल है। परंतु जो भगवान की तरफ चलने वाले हैं उनका प्राणों में मोह नहीं रहता, प्रत्युत उनका सर्वत्र भगवत भाव रहता है और एकमात्र भगवान में प्रेम रहता है, इसलिए वे निर्भय हो जाते हैं। उनका भगवान की तरफ चलना देवी संपत्ति का मूल है। नृसिंह भगवान के भयंकर रूप को देखकर देवता आदि सभी डर गए, पर प्रहलाद जी नहीं डरे, क्योंकि प्रहलाद जी की सर्वत्र भगवत बुद्धि थी। इसलिए वे नृसिंह भगवान के पास जाकर उनके चरणों में गिर गए और भगवान ने उनको बड़े प्रेम से उठाकर गोद में ले लिया और उनको जीभ से चाटने लग गए। व्यपेत भी प्रीत मना पुनस्त्वम तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। अर्जुन ने 45वें श्लोक में कहा था, भये न च प्रव्यथितं मनो मे। अतः भगवान ने भयेन के लिए कहा, व्यपेत भी ही, तू भय रहित हो जा, और प्रव्यथितं मनो मे। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, प्रीत मना, तू प्रसन्न मन वाला हो जा। भगवान ने विराट रूप में अर्जुन को जो चतुर्भुज रूप दिखाया था, उसी के लिए भगवान पुनः यह पद देकर कह रहे हैं कि वही मेरा यह रूप तू फिर अच्छी तरह से देख ले। तदेव कहने का तात्पर्य है कि तू देव रूप विष्णु रूप के साथ ब्रह्मा शंकर आदि देवता और भयानक विश्व रूप नहीं देखना चाहता, केवल देव रूप ही देखना चाहता है, इसलिए चलो वही रूप तू अच्छी तरह से देख लो। अर्जुन की प्रार्थना सुनकर भगवान अभी जो रूप दिखाना चाहते हैं, उसके लिए भगवान ने यह इदम शब्द का प्रयोग किया है। संजय और अर्जुन की दिव्य दृष्टि कब तक रही? संजय को वेदव्यास जी ने युद्ध के आरंभ में दिव्य दृष्टि दी थी। वेदव्यास जी ने कहा था, एष ते संजयो राजन युद्धमेतद् वदिष्यति एतस्य सर्व संग्रामे न परोक्षम भविष्यति। चक्षुषा संजयो राजन दिव्येनैव समन्वितः कथयिष्यति ते युद्धम सर्वज्ञश्च भविष्यति। तो संजय धृतराष्ट्र को युद्ध के समाचार सुनाते रहे, परंतु अंत में जब दुर्योधन की मृत्यु पर संजय शोक से व्याकुल हो गए, तब संजय की वह दिव्य दृष्टि चली गई। तब पुत्रे गते स्वर्गे शोकार्तस्य ममानघ ऋषि दत्तम प्रणष्टे तद दिव्य दर्शित्वमद्य वै। अर्जुन के द्वारा विश्व रूप दिखाने की प्रार्थना करने पर भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे योगम ईश्वरम 11:8। और अर्जुन विराट रूप भगवान के देव रूप उग्र रूप आदि रूपों के दर्शन करने लगे। जब अर्जुन के सामने अत्युग्र रूप आया तब वे डर गए और भगवान की स्तुति प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि मेरा मन भय से व्यथित हो रहा है, आप मुझे वही चतुर्भुज रूप दिखाइए। तब भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर द्विभुज रूप से हो गए। इससे सिद्ध होता है कि यहां 49वें श्लोक तक ही अर्जुन की दिव्य दृष्टि रही। 51वें श्लोक में स्वयं अर्जुन ने कहा है कि मैं आपके सौम्य मनुष्य रूप को देखकर सचेत हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। यहां शंका होती है कि अर्जुन तो पहले भी व्यथित हुए थे, दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथा और दृष्ट्वा ही त्वाम प्रव्यथितांतरात्मा 11:23-24। अतः वही उनकी दिव्य दृष्टि चली जानी चाहिए थी। इसका समाधान यह है कि यहां अर्जुन इतने भयभीत नहीं हुए थे जितने यहां हुए। यहां तो अर्जुन भयभीत होकर भगवान को बार बार नमस्कार करते हैं और उनसे चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए प्रार्थना भी करते हैं 45वां श्लोक, इसलिए यहां अर्जुन की दिव्य दृष्टि चली गई। दूसरा कारण यह भी माना जा सकता है कि कि पहले अर्जुन की विश्वरूप देखने की विशेष रुचि थी, दृष्टुमिच्छामिते रूपम 11:3। इसलिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, परंतु यहां अर्जुन की विश्वरूप देखने की रुचि नहीं रही और वे भयभीत होने के कारण चतुर्भुज रूप देखने की इच्छा करते हैं, इसलिए उनकी दिव्य दृष्टि चली गई। अगर संजय और अर्जुन शोक से भय से व्यथित नहीं होते तो उनकी दिव्य दृष्टि बहुत समय तक रहती और वे तब तक न जाने कितनी बहुत सी बातें देख लेते, परंतु शोक और भय से व्यथित होने के कारण उनकी दिव्य दृष्टि चली गई। इसी तरह से जब मनुष्य मोह से संसार में आसक्त हो जाता है तब भगवान की दी हुई विवेक दृष्टि काम नहीं करती। जैसे मनुष्य का रुपयों में अधिक मोह होता है तो वह चोरी करने लग जाता है और फिर मोह बढ़ने पर डकैती करने लग जाता है, और अत्यधिक मोह बढ़ जाने पर वह रुपयों के लिए दूसरों की हत्या तक कर देता है। इस प्रकार ज्यो ज्यो मोह बढ़ता है त्यों ही त्यों उसका विवेक काम नहीं करता। अगर मनुष्य मोह में न फंसकर अपनी विवेक दृष्टि को महत्व देता है तो वह अपने उद्धार करके संसार मात्र का उद्धार करने वाला बन जाता है। परिशिष्ट भाव। अर्जुन ने घबराकर भगवान से कहा, तत्क्षामये त्वा महम प्रमेयम 11:42। तो भगवान यह कहते हैं कि मैं चाहे शांत अथवा उग्र किसी भी रूप में दिखाई दूं, हूं तो तेरा प्यारा सखा ही ना, तुम डर गए तो ये तो तुम्हारी मूर्खता है, मित्रता में ढीला ही है। जो कुछ दिख रहा है वह सब मेरी लीला ही तो है, इसमें घबराने की क्या बात है। मित्रता में कौन बड़ा और कौन छोटा, भगवान ही जगत रूप से प्रकट हुए हैं, इसलिए यह जगत भगवान का आदि अवतार कहा जाता है। आद्योवतार है पुरुष है परस्य, श्रीमद् भागवत 2:6, 41वां श्लोक। जैसे भगवान ने राम कृष्ण आदि के रूपों में अवतार लिया है, ऐसे ही जगत रूप से भी भगवान ने ही अवतार लिया है। इसको अवतार इसलिए कहा है कि इसमें भगवान दृश्य रूप से दिखने में आ जाते हैं। अवतार के समय लौकिक दृष्टि से दिखने पर भी भगवान सदा अलौकिक ही रहते हैं। 4:6। परंतु राग द्वेष के कारण अज्ञानियों को भगवान लौकिक दिखते हैं। 7:24, 25, 9:11। भगवान शांत अथवा उग्र किसी भी रूप में आए उसी की मर्जी है। सुंदर दृश्य हो, पुष्प खिले हो, सुगंध आ रही हो, तो यह भी भगवान का रूप है। और कहीं मांस हड्डियां गंदगी पड़ी हो, दुर्गंध आ रही हो, तो यह भी भगवान का रूप है। भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। भगवान ने राम कृष्ण आदि रूप धारण किए तो मत्स्य कच्छप वरा आदि रूप भी धारण किए। कोई भी रूप धारण करे है तो वे भगवान ही, वो रूप तो भगवान का ही है और जो क्रिया है वो लीला है। कोई पाप अन्याय करता हुआ दिखे तो समझो कि भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं। वह जैसा रूप धारण करते हैं वैसी लीला भी करते हैं। यथा अनेक वेश धरी नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव देखा वही आपुन होई न सोई। उत्तरकांड 72वां दोहा। मूर्ति का रूप अर्चावतार धारण करके वे मूर्ति की तरह ही अचल रहने की लीला करते हैं। मूर्ति रूप धारण करके क्रिया करने में शोभा नहीं है, प्रत्युत क्रिया न करने में ही शोभा है, अन्यथा वे अर्चावतार कैसे रहेगा। वराह का रूप धारण करके वे वराह की क्रिया करते हो और मनुष्य का रूप धारण करके वे मनुष्य की तरह क्रिया करते हैं। भगवान कोई भी रूप धारण करके कैसी क्रिया करे उससे भक्तों के हृदय में कोई विकार नहीं होता, क्योंकि उनकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, होना संभव ही नहीं। हमें जो संसार दिखता है ये भगवान का विराट रूप नहीं है, क्योंकि विराट रूप तो दिव्य और अव्यय है, पर दिखने वाला संसार भौतिक और नाशवान है। जैसे हमें भौतिक वृंदावन तो दिखता है पर उसके भीतर का दिव्य वृंदावन नहीं दिखता, ऐसे ही हमें भौतिक विश्व तो दिखता है पर उसके भीतर का दिव्य विश्व नहीं दिखता। तो देखने में कारण है सुख भोग की इच्छा, भोगेच्छा के कारण ही जड़ता, भौतिकता, मलिनता आई है। अगर भोगेच्छा को लेकर संसार में आकर्षण न हो तो सब कुछ चिन्मय विराट रूप ही है। तत्वबोध होने पर ज्ञानी को तो संसार चिन्मय दिखता है, पर भक्त को वह माधुरी रूप से दिखता है। माधुरी रूप से दिखने पर जैसे अपने शरीर में उसकी स्वाभाविक प्रियता होती है, ऐसे ही भक्त की मात्र प्राणियों के साथ स्वाभाविक प्रियता होती है। परंतु अर्जुन ने ऐश्वर्य रूप से भगवान का विराट रूप देखा था, क्योंकि वे वही रूप देखना चाहते थे। द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम 11:3। माधुर्य में प्रियता विशेष होती है और ऐश्वर्य में प्रभाव विशेष होता है। तात्पर्य यह है कि दिव्य विराट रूप एक होने पर भी भावना के अनुसार अनेक रूपों में दिखता है, और अनेक रूप से दिखने पर भी एक ही रहता है। एकता में अनेकता और अनेकता में एकता, यह भगवान की विलक्षणता है, अलौकिकता है, विचित्रता है।